भोजन क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही कहते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रियों सुख के लिए भोजन बनाते हैं वे निश्चित रूप से पाप करते हैं। तात्पर्य भगवत भक्तों या कृष्ण भावना भावित पुरुषों को संत कहा जाता है। वे सदैव भगवत प्रेम में निमग्न रहते हैं, जैसे कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमार्जन छुरित भक्ति विलोचने न संत सदैव विदेश विलोकयन्ति। संतगण श्री भगवान गोविंद समस्त आनंद के दाता या मुकुंद भक्ति के मुक्ति के दाता या कृष्ण सर्वों को आकर्षित करने वाले पुरुष के प्रगाढ़ प्रेम में मग्न रहने के कारण कोई भी वस्तु परम पुरुष को अर्पित किए बिना ग्रहण नहीं करते। फलतः ऐसे भक्त पृथक पृथक भक्ति साधनों के द्वारा यथा श्रवण कीर्तन स्मरण अर्चन आदि के द्वारा यज्ञ करते रहते हैं, जिससे वे संसार की संपूर्ण पापमयी संगति के कलमश से दूर रहते हैं। अन्य लोग जो अपने लिए या इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं वे न केवल चोर है अपितु सभी प्रकार के पापों का करने वाले हैं। जो व्यक्ति चोर तथा पापी दोनों है भलावा किस तरह सुखी रह सकते हैं? या संभव नहीं। अतः सभी प्रकार से सुखी रहने के लिए मनुष्यों को पूर्ण कृष्ण भावनामृत में संकीर्तन यज्ञ करने की सरल विधि बताई जानी चाहिए, अन्यथा संसार में शांति या सुख नहीं हो सकता। ओम अध्याय का नाम और विषय है कर्मयोग। कर्मयोग है भक्ति जाने के रास्ते का पहला स्टेप। कर्मयोग में कर्मयोगियां वो काम जो करते हैं उससे कुछ पाव भगवान को अर्पण करते हैं वैदिक विधान के अनुसार, विशेषकर यज्ञ में। वैदिक सभ्यता में यज्ञ बनाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिष्य लोग तो रोज एक्चुअली तीन बार यज्ञ करते हैं, घर में छोटे सा होम यज्ञ, वो दैनिक नित्य कर्म है। और कभी कभी वो नैमित्तिक कर्म भी है, एक विशेष तिथि में विशेष यज्ञ करना है और श्राद्ध में विशेष व्यवस्था होती है। फिर काम या कर्म भी है, एक विशेष कर्म के लिए यज्ञ, जैसे कि उद्रेष्ट यज्ञ। यदि कोई नर नारी विवाहित कोई पुत्र की उत्पत्ति न हुई तो एक विधि है जो पुत्रेष्टि यज्ञ कहलाता है, जिससे यदि यज्ञ सफल होते हैं तो यज्ञ का बल से एक्चुअली ब्राह्मणों जो कराने वाले हैं ब्राह्मणों के बल से पुत्र का जन्म होता है। जैसे कि दशरथ महाराज ऐसे
तीन पत्नी थी लेकिन एक ही संतान नहीं। दृष्टि यज्ञ करने के बाद चार सात पुत्र विष्णु भरत राम भरत लक्ष्मण शत्रु। तो यज्ञ करना चाहिए। यज्ञ क्या है? अंग्रेजी में प्रभुपाद ये यज्ञ शब्द सैक्रिफाइस में हम अंग्रेजी में वो सैक्रिफाइस इसका अर्थ है कुछ अर्पण करना, समर्पण करना। तो यज्ञ क्या मतलब? वो कर्म से जो फल उत्पादित होते हैं उससे कुछ भाग यज्ञ में अर्पण करना। और इस 10-12 श्लोक में ये समझाएंगे। श्री कृष्ण यज्ञ के बारे में चर्चा करते हैं और इस श्लोक में बोलते हैं कि जो काम करते हैं और वो काम का फल से, मतलब काम का फल से क्या होगा? कुछ धन मिल जाते हैं, धन धन्य अनाज तो ऐसे वस्तुओं मिल जाते हैं। तो यदि कोई वो सब जो मिल जाते हैं तो आपने के लिए या केवल अपने परिवार के लिए भोग करते हैं, लेकिन भगवान को कम से कम देवताओं को अर्पण नहीं करते। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वैसे व्यक्ति बहुत बड़ा पापाचारी है, क्योंकि वास्तव में वो सब कुछ जो हम मिलते हैं वो एक्चुअली भगवान की कृपा है। और इस भौतिक जगत में ये सभी वस्त्रों मिलते हैं भगवान की भौतिक प्रतिनिधियों के द्वारा, अर्थात देवताओं के द्वारा। तो साधारण लोगों के लिए ये यज्ञ विधि पालन करने की आवश्यकता है। एक्चुअली इस श्लोक में प्रभुपाद भक्तों के बारे में, भक्तों भक्षक के अनुवाद किया। एक्चुअली इस श्लोक का तात्पर्य है और प्रथम या स्पष्ट अनुवाद है कि कार्मिक लोग का कर्तव्य है ये भौतिक यज्ञ विधि करना, नहीं तो जो पापी कुछ भी खाते हैं तो इसके पहले यज्ञ में अर्पण नहीं करते तो वो व्यक्ति चौड़ है और बड़ा पापी है। लेकिन प्रभुपाद अनुवाद किया भक्तों के बारे में। जो ये सभी श्लोक गीता में, सभी श्लोक जो पूरा वेद उपनिषदों रामायण संपूर्ण वैदिक शास्त्रों में, तो सभी श्लोक का वास्तविक तात्पर्य है भगवान का गुणगान प्रशंसा करना। भक्ति की भक्ति श्रेष्ठ पंथ है ये स्थापित करना और भक्तों की चरम स्थिति, मतलब कर्म ज्ञानी योगी भक्तों के बीच भक्तों श्रेष्ठ। तो वो एक्चुअली सभी वैदिक शास्त्रों के सभी श्लोक का तात्पर्य है। वेद रामायण चैव पुराणे भारते तथा आदि अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र दीयते। महाभारत के अंत में वेदव्यास ये मंतव्य किए कि समस्त वैदिक शास्त्रों, चाहे मूल वेद चाहे रामायण पुराण शास्त्र, तो आधा अंत मध्य प्रथम अन्वय और बीच में केवल श्रीहरि की प्रशंसा करते। तो सभी श्लोक ऐसे तो देखते हैं शास्त्र में कि कोई कोई श्लोक है जिसमें इंद्रदेव का प्रशंसा होता है या अग्नि या चंद्र महान है और
प्रशंसा करते हैं,
लेकिन एक्चुअली ये सभी श्लोक का निर्देश भगवान हरि का प्रशंसा करते हैं। यदि शिव का प्रशंसा होते हैं तो वो हो सकते हैं, लेकिन उससे ही नहीं समझना चाहिए कि शिव अथवा इंद्र चंद्र वायु इत्यादि ये सभी देवताओं भगवान श्री विष्णु जो परम पुरुष है, ये सभी देवताओं भगवान विष्णु के प्रतिनिधि और सभी देवताओं जो शक्ति संबंध होते हैं तो वो शक्ति भगवान विष्णु से होते हैं। तो यही समझना चाहिए कि सभी देवताओं की प्रशंसा होते हैं। देखिए भक्तों समझते हैं कि देव्यास का सूक्ष्म उद्देश्य देवताओं की प्रशंसा करने के द्वारा भगवान विष्णु की प्रशंसा करना। दूसरी बात है कि ये सभी नाम इंद्र चंद्र वायु शिव ये एक्चुअली भगवान विष्णु के दूसरे दूसरे नाम, जैसे कि शिव ये शब्द का क्या मतलब है, मंगल, तो सबसे मंगल का नाम भगवान विष्णु। इंद्र इसका मतलब राजा, तो सबसे बड़ा राजा कौन है, भगवान विष्णु। तो इस प्रकार भी इस श्लोक में इस श्लोक का बाह्य विषय कार्मी लोक का वर्णन, लेकिन प्रभुपाद भक्त शब्द प्रयोग करके भक्तों की गुण व्याख्या करके इस श्लोक का अनुवाद किया कि एक्चुअली वो कर्मयोग ज्ञान भी यदि भगवान विष्णु को सब कुछ आकर नहीं करते तो अधिक भाव से मुक्त होते, लेकिन वो भावना कि एक भाव में विष्णु को देखता हूँ और ज्यादा भाव खुद के लिए रखता हूँ, तो वो भावना वो एक्चुअली पापमय भावना है। भक्तों इतना महान है क्यों, क्योंकि भक्तों की कोई इच्छा नहीं है कि तो ये मानस देह हो गए हो जो कि चुहा आप बोले नंद किशोर, हे नंद किशोर, हे कृष्णा, सब कुछ जो मैं भ्रम करके सोच रहा हूँ मेरा है, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरा परिवार, मेरा धन, एक्चुअली कुछ मेरा नहीं है, आप सब आपकी है, इसलिए सब कुछ जो आप करके मुझको दिया है मैं वापस आपको अर्पण करता हूँ, सब कुछ आपकी सेवा लगाता हूँ। तो ये भक्ति भावना है, और जब तक ये पूरा समर्पित भावना नहीं होती तो चाहे भी कामी चाहे भी ज्ञानी चाहे भी योगी जो भी हो तो सब कृष्ण भक्ति से च्युत होते हैं और पूरी शांति नहीं मिलते हैं। कृष्ण भक्त निष्काम शांत भक्ति मुक्ति भक्ति मुक्ति सिद्धि कामी शपने अशांत कृष्णदास का भी राजगुरु स्वामी विश्लेषण का विश्लेषण कि केवल शुद्ध भक्तों संतुष्ट होते, क्योंकि राजा बोले मन श्री नंद नंदन अभय चरण पूरा संतुष्ट है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अभय चरण शरण है। और दूसरे तो स्वयं का प्लान कर ऐसे करूंगा वैसे करूंगा यज्ञ करूंगा और यज्ञ करने से ही नहीं इंद्रपद प्राप्त करूंगा, तो ये सभी प्रकल्प योजना, लेकिन ये सब अशांति का कारण और वास्तव में पाप का कारण। सामान्य रूप हम सोचते हैं कि देवताओं बहुत ही पुण्यवान, तो एक दृष्टि से वो सही है, लेकिन दूसरी दृष्टि से देवताओं भी पापी है, क्योंकि देवताओं विष्णु भक्त है। लेकिन विष्णु भक्ति कहते हैं और सोचते हैं हम भगवान विष्णु की सेवा करेंगे और उनकी कृपा से हम स्वर्ग वास करेंगे और स्वर्ग प्राप्त स्वर्ग सुख भोग करेंगे। तो यही भावना शुद्ध भक्ति नहीं है। और इसमें भगवान श्री विष्णु के चरण में शरण लेने की भी, क्योंकि वो ही भावना है कि मैं भगवान विष्णु से अलग भोगी बन जाऊंगा, तो वो ही भावना सभी भाव का मूल कारण है। और इसलिए हम देखते हैं कि इंद्रदेव जो इतना बड़ा पुण्यशाली होने के दास शतक्रत इंद्रदेव का एक मतलब सो ऐसे बड़े बड़े यज्ञ बनाए हुए हैं और इससे वो इंद्रपद मिल गए तो बहुत बड़ा पुण्यवान है कर्म खंड के विचार में। लेकिन देखते हैं कि इतना बड़ा पद मिलते भी और इंद्र का नाम एक नाम है सचिना सचिन देवी चैतन्य महाप्रभु पति के बारे में नहीं भक्त नहीं इंद्रदेव की भक्त तो सची वे पूरा स्वार्थ में सबसे सुंदरी है सबसे बड़ी सुंदरी। फिर भी इंद्रदेव संतुष्ट नहीं होते और इसलिए बारंबार पाप करते हैं अहल्या की लज्जा हरण करते हैं इत्यादि इत्यादि इत्यादि, क्योंकि इंद्रदेव की अशेष कामना है और इसलिए ही जबरदस्त है वो पाप वो प्रश्न अर्जुन श्री कृष्ण से पूछे कि बलानि बनी क्या शुरू है सलाद वाई डू वी से किस लिए हम पाप करते हैं अनिच्छा नाम की भाषा है सलाद बनी हम पाप करते हैं एक्चुअली इच्छा नहीं है हमें मालूम है कि पाप करना अच्छा नहीं है लेकिन बलाद ही बनी हो जबरदस्त हम पाप करते हैं। तो हृदय हृदय में कोई इच्छा नहीं है लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि वो अर्जुन का प्रश्न श्री कृष्ण से पूछ तो किस लिए हम पाप करते अनिच्छा अनिच्छित रूप होने के जवाब में भगवान श्री कृष्ण बोले काम एष क्रोध एष रज गुण सम महाशम महापाप द्वितीय कि जो काम और क्रोध से परायण होते हैं तो मन और इंद्रियों को नियंत्रण नहीं कर सकते और इसलिए बारंबार पाप करते हैं। तो इसलिए वो पाप करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे दमन करने के लिए ये यज्ञ देती है क्योंकि लोग तो पापी हैं भगवान से अलग होने से ये सब भौतिक विषय हमको भोग करना चाहते हैं तो इसलिए ये यज्ञ विधान होते हैं। ठीक है भोग करो लेकिन कुछ भाग भगवान विष्णु को अर्पण करो और इससे ही आप और भोग मिल सकते हैं। तो ये विधान किस लिए जैसे कि लोग धीरे धीरे भगवान विष्णु को कुछ ना कुछ समर्पण करेंगे फिर धीरे धीरे आशा है कि भगवान विष्णु को अर्पण करने से वो भक्ति पढ़ना मनोवृत्ति का उन्नयन होगा वो विशेषकर संभव हो यदि भगवान के भक्तों की संगति होती है फिर संभव हो। तो सामान्य रूप जो पुण्य कर्म करते हैं वे भक्ति में प्रवेश करने के लिए और योग्य पापी जा सकते ईशाम चंद्रगतम पापांजनान पुण्य कर्माणां निबंध मोह निर्मुक्त जंति मांगुरव्रतम। श्री गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी प्रकार पाप पुरुष से मुक्त होते हैं और इस जीवन में और पूर्व जीवनों में भी पुण्य कर्म किए हैं और जो केवल पुण्य कर्म नहीं करते ज्ञान अर्जन आध्यात्मिक ज्ञान अर्जन नहीं करते तो वैसे व्यक्ति विशेषकर योग्य रहे भक्ति में प्रवेश करने के लिए। तो ये सब काम योग ज्ञान योग इत्यादि तो ये सब जीवों के लिए प्रस्तुति होती है भगवान की प्रेममय आत्म समापन भाव युक्त शुद्ध भक्ति में प्रवेश करते हैं। साधारण लोग के लिए एक चेतावनी है तो दुकान रेस्टोरेंट जाके मत खाओ, आइसक्रीम मत खाओ, गुटखा पान शाकाहार भी मत खाओ। हम जो इस शुद्ध कृष्ण भक्ति पंथ में है हम शाकाहारी नहीं है। बहुत लोग सोचते कि हम शाकाहारी नहीं, हम आहार ही नहीं, आहार का मतलब नहीं भोगी हूं, हम श्री कृष्ण प्रसाद सेवी हूं। साधारण शाक सब्जी अन्न इत्यादि हम नहीं करते, भगवान के भक्तों केवल श्री कृष्ण प्रसाद और कृष्ण प्रसाद लेने से एक बात है कि वो पाप राशि जो वो क्षीण हो जाते हैं और मन में कृष्ण भक्ति आते हैं। जैसे कि बुद्धिराव ठाकुर एक सुंदर गान गए कि एक दिन शांति पड़े दुई प्रभु अद्वैत घरे दुई प्रभु भोजने बसे शक करे अशदान प्रभु बोले भक्तगण ए शक कृष्ण असाधु इन शाक आशा ने कृष्ण प्रेम ऐसे मन हरि हरि बोले सर्वजन। कि एक दिन अद्वैत प्रभु के घर में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु सभी निज भक्तों के साथ प्रसाद सेवा के लिए बैठे हुए थे तो अद्वैत प्रभु महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु शाक प्रसाद शाक अर्थात हिंदी में पालन करते हैं बंगाल में कितना वैरायटी है अनेक अनेक। तो चैतन्य महाप्रभु थोड़ा सा शाक खाए हैं और सभी भक्तों को बोले कि ओ कितना सुंदर स्वाद है ये शाक। तो इससे समझना है कि कृष्ण स्वयं इसको खाया है, ये कृष्ण का विशिष्ट है, ये कृष्ण का मुख में पूरा अमृत होते है। तो श्री कृष्ण जो भक्तों शुद्ध भावना में श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं तो भगवान स्वयं वो सब करते हैं। नास्तिक ज्ञान सोचते हैं कि ये भक्त क्या करते हैं, तो पुतल को कुछ भोजन खिलाते हैं तो क्या बोल, लेकिन भक्तों जानते हैं कि भगवान स्वयं करते हैं और पहले जो हमें दिए वो प्रसाद और बाद जैसे कि देखते देखने की नहीं, तो पहले नैवेद्य था और बाद में प्रसाद और वो प्रसाद ने सब साग सब्जी अन्न दाल इत्यादि उसके साथ कृष्णा मुखामृत मिश्रित है और इससे इसका दिव्य चिन्मय स्वाद। तो चैतन्य महाप्रभु जब कृष्ण प्रसाद शाक स्वादन किया चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को बोले ऐसा कृष्ण स्वाद कृष्ण जरूर ये पालन खाया है तो ऐसे शाक आस्वादन है। यदि हम इस प्रकार प्रसाद शाक खाएंगे और खाएंगे नहीं अस्वाद करें शुद्ध भावना तो कृष्ण प्रेम ऐसे मन वो कृष्ण प्रसाद देने से तो मन में कृष्ण प्रेम की स्मृति होती है। इसलिए चंद्र जन्म आप हर बोले हरि हरि बोले सर्वजन और ऐसा और तीन चार चौथी कविता जगन्नाथ भक्ति विनोद ठाकुर का जगन्नाथ प्रसाद अन्न त्रिभुवन करे धन्य चतुरारी नाचे जगन्नाथ जगन्नाथ का प्रसाद इससे त्रिभुवन पूरे जगत धन्य हो जाती और वो अति दुर्लभ और अति अमूल्य प्रेममयी वस्तु मिलके त्रिपुरारी अर्थात भगवान महादेव शिव नाचते कृष्ण प्रेमानंद तो ये प्रसाद लेना का उपहार है तो नहीं समझना चाहिए कि ये भोजन नहीं भोजन मतलब जो हम भुगते हैं यही प्रसाद हम सेवा करते हैं और इसी भावना में प्रसाद सेवा करने से तो सभी प्रकार का पाप जनित कलुष नष्ट हो जाते हैं और मन में कृष्ण प्रेम